السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. آج ہم جن صحابی رسول کے بارے میں جاننے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی زیادہ شہرت لوگوں میں نہیں ہے. اکثر لوگ مکہ میں جو غلاموں کے حالات جانتے ہیں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذہن میں آتے ہیں، یا زیادہ سادہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ پہلے انسان جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا، اور وہ پہلے انسان جن کو اسلام کے راستے میں اذیت دی گئی، وہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نام خباب، کنیت ابو عبداللہ، نسب نامہ ان کا خباب بن ارت بن جندلہ ابن سعد، اور زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کے مکہ میں فروخت کیے گئے. اس زمانے میں غلاموں کی بھی منڈیاں ہی کرتی تھیں، جیسے آج کے دور میں بازاروں میں آپ چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو غلاموں کے بازار میں غلام بکتے تھے، یعنی انسان بکا کرتے تھے. ام الانمار خزائیہ بنو خزا سے تھی، وہ مکہ میں غلاموں کی منڈی میں گئی. وہ چاہتی تھی کہ ایک ایسا غلام خرید لائے جس سے وہ گھر کا کام کاج لے سکے، اور پھر کوئی کاروبار بھی سکھا دے جو اس کے لیے مالی طور پہ نفع بخش بھی ثابت ہو. جیسے آج آپ کچھ پراپرٹیز خرید لیتے ہیں نا رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے، پھر آپ اس کا رینٹ اسے حاصل کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح کہ یہ ایک غلام کو کچھ ایسا کچھ ہنر سکھا دیا جائے کہ وہ پھر آگے کچھ کاروبار کرے، اور جو غلام کاروبار کرتا تھا وہ سارا تو مالکوں کے پاس ہی جاتا تھا. تو وہ غلاموں کو غور سے دیکھنے لگی جن کو بیچنے کے لیے منڈی میں لایا گیا تھا. اس کی نظر ایک ایسے بچے پہ پڑی جو صحت مند بھی تھا اور ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچا تھا. ذہانت اس کے چہرے پہ نمایاں تھی. اس کو یہ ہونہار بچہ پسند آ گیا، قیمت ادا کی اور اس کو ساتھ لے کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. راستے میں ام انمار نے بچے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بولے، خباب. اس نے پوچھا، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ بولے، ارت، الف سے الف را تا. اس نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ بتایا، نجد سے. اس نے کہا، پھر تو تم عربی ہو. تو کہنے لگے، ہاں میں عربی ہوں اور قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں. تو وہ پوچھنے لگی، پھر یہاں مکہ میں تم غلاموں کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے چڑھ گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کی ایک اور قبیلے کے ساتھ جنگ ہو گئی جس میں ہمارا قبیلہ شکست کھا گیا، اور دوسرے قبیلے نے ہمارے مال و ویشی اپنے قبضے میں لے لیے، عورتوں کو گرفتار کر لیا، بچوں کو پکڑ لیا، اور انہی بچوں میں میں بھی تھا جو ایک آقا سے دوسرے آقا کے پاس پہنچتا ہوا یہاں پہ پہنچ گیا، یعنی بکتے بکتے. تو انہوں نے ایک طرح سے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی دیکھ رہے تھے کہ یہ غلام ہیں اور بک رہے ہیں آگے. آپ نے ابھی پہلے بھی حضرت زید کے بارے میں بھی پڑھا، حضرت صہیب رومی کے بارے میں بھی پڑھا. کیا آپ دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں سے؟ وہ بھی آزاد لوگ تھے لیکن غلام بن گئے. کیسے بکتے بکتے یہاں تک پہنچ گئے، مکہ تک. اور حضرت صہیب اور رومی تو گورنر کے بیٹے، اور کہاں غلامی. اب آپ دیکھیے کہ اس سے کیا یہ نہیں پتا چلتا کہ کئی دفعہ انسان کئی چیزوں کو اپنے لیے بہت برا سمجھ رہا ہوتا ہے، गुलामी से ज्यादा और क्या बात हो सकती कि इससे ज्यादा निचला तो कोई स्टेटस ही नहीं था, ना उस माशरे में ना कहीं और। और एक इंसान इतनी बड़ी एक समझ ले रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता हुआ गुलामी के दर्जे पे पहुंच जाए, तो ऐसे इंसान के लिए तो इंसान सोचता है कि बहुत ही बदनसीबी है, बदकिस्मती है। मगर आपने देखा कि अल्लाह ताला की प्लानिंग कैसी होती है, वो कहाँ कहाँ हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ पहुंचे, किस किस के पास बिके और कहाँ एंड अप हुए, और उसके अंदर कितनी बड़ी खैर छुपी हुई थी। जैसे कि आपको किसी स्टोरी का एंड पता हो ना कि उसके बाद वो सब अच्छा हो गया, वो हंसी खुशी रहने लगे, तो आपको बीच के जो हालात होते हैं उनसे डर नहीं लगता। अब वो पता होता है एंडिंग इसकी बड़ी अच्छी है। मसलन आप कोई स्टोरी देख रहे हैं, कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसके अंदर आपको पता है कि एंडिंग के अंदर तो ये हो जाना है, या दुनिया के हालात में आपको किसी का पता है कि फलां बंदा, फॉर एग्जाम्पल यही इन्हीं की मिसाल ले लें कि ये आगे जाके बहुत बड़े सहाबी बने, तो अब आपको उतना दुख नहीं होता कि क्यों ये निकले वहां से, हाय बेचारे क्यों इस तरह से गुलाम बने। आपको पता है कि एंड में जाके तो इनके लिए ये गुलामी कितनी बड़ी सआदत बन गई, कितने बड़े मर्तबों को पाने का जरिया बन गई। अगर ये वहीं पे रहते तो हो सकता था कि ये वहां तक पहुंच ही ना पाते, सारी जिंदगी उन्हीं अंधेरों के अंदर पड़े रहते। तो जब आपको एंडिंग का पता होता है ना तो फिर आपको मलाल नहीं होता। इसी तरह हमारी जिंदगियों के अंदर है बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और उनमें जब अल्लाह पे भरोसा नहीं होता ना तो इंसान परेशान होने लगता है और इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा होता और मायूस होने लगता है और कहता है ये मेरे साथ क्यों हो गया। हालांकि अल्लाह ताला की प्लानिंग में उसने पता नहीं इस बंदे को कहां से कहां पहुंचाना हो, वो हम नहीं जान पाते, और हम जस्ट वो मोमेंट देख रहे होते हैं जिसमें ये सब हो रहा है, हम एंडिंग नहीं देखते, हम अंजाम की तरफ हमारी नजर जा ही नहीं सकती क्योंकि हम फ्यूचर नहीं जानते। मगर हाँ ये जरूर हो सकता है कि हमारा अल्लाह ताला पे इतना भरोसा हो कि अंजाम वो बखैर ही करेगा, वो मेरा रब है, वो जरूर अच्छा ही करेगा। इस भरोसे के साथ आप चल सकते हैं क्योंकि अंजाम का फ्यूचर का तो किसी को भी इल्म नहीं। तो अगर वो देख लें कि भाई हम इस तरह से बन जाएंगे कि हम लोग आखिर में जाके वो लोग जिनको जन्नतों की बशारतें मिल गई, जिनका जिक्र रहती दुनिया तक, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र कुरान में आ गया, उनका नाम आ गया, हजरत सुहेब रूमी का इस तरह से इनडायरेक्टली जिक्र आ गया कि उनकी शान में आयत उतर गई, तो अब आप देखें कि इसके बाद तो इंसान सोचता है कि कितनी बड़ी खुशकिस्मती है जो मेरे साथ हो रही है, उसको बदकिस्मती नहीं कहता। तो इन बातों से सीखें कि जिंदगी के जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये डिटरमिन नहीं करते कि मेरा एंड क्या होगा, ये तो पार्ट ऑफ द स्टोरी है, ये तो इस मेरी जिंदगी की जो स्टोरी है, फिल्म है, इसका एक हिस्सा है। कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी अच्छे दिन होंगे, कभी बुरे दिन होंगे, लेकिन दुआ यही होनी चाहिए कि अल्लाह खात्मा बिल खैर करना, अंजाम बखैर हो मेरा, तो अल्लाह ताला ने कहीं पहुंचाना हो तो उससे पहले उतार चढ़ाव तो आएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, कितने उतार चढ़ाव है लेकिन एंडिंग देखें। तो इसी तरह ये यहाँ पे बिक रहे हैं और बिकते बिकते अब देखें एक जगह पे अपने माँ बाप के पास अच्छे भले रह रहे थे, बच्चे हैं अभी बालिग भी नहीं हुए, जैसे सुहेब रोमी, जैसे हजरत जैद, बच्चे हैं तो कहाँ माँ बाप की शफकत से महरूम हो गए और किधर से किधर पहुंच गए। और ये भी इसी तरह अब उम्मे अनमार ले आई ये इस लड़के को, और उसका जैसे कि प्रोग्राम था कि मैं इससे कोई बिजनेस कर पाऊंगी, इसको कुछ माहिर बनाती हूँ ताकि बाद में इससे मुझे फायदा हो सके, तो उसने एक मशहूर कारीगर लोहार था उसके हवाले इनको कर दिया ताकि वो इसको सिखाएं सारा हुनर तलवार बनाना और इस तरह। तो ये बड़े होशियार थे, इन्होंने बड़ी जल्दी तलवार बनाने में महारत हासिल कर ली। जब ये एक अच्छे कारीगर बन गए तो उम्मे अनमार ने इनके लिए एक दुकान किराए पे ले ली और इसमें इनको काम काज के लिए बिठा दिया। और इसे इनको खुद को पर्सनल फायदा नहीं होता था, इसलिए क्योंकि वो सारी कमाई जो थी वो उनकी मालकन ही ले लेती थी। फिर उसके बाद ये इसी तरह जवान हो गए, लोग इनके पास आया करते थे, बड़े शौक से इनसे तलवारें खरीदते थे, जिसको तेज करानी होती थी तलवार तो वो तेज कराने आता था, क्योंकि इनके अखलाक भी बड़े अच्छे थे, नरम खू थे, मीठी जुबान के साथ बात करते थे और तलवार के बनाने में भी और तेज करने में भी बड़े माहिर थे। अब जिस वक्त ये अभी जवानी के अपने टाइम में थे तो अपने काम से जब भी फारिग होते तो अक्सर सोचा करते थे कि अरब के हालात कैसे हैं, ये लोग कैसे इशार और फसाद में गर्क है, इनके अंदर कितनी गुमराही है, बरबरीयत है, और इस एहसास से कांप उठते थे कि मैं भी तो इस माशरे का एक फर्द हूं। अक्सर कहा करते थे कि इस अंधेरी रात की आखिर सहर कब होगी, और इनकी ये दिली तमन्ना थी कि अल्लाह मुझे इतनी लंबी उम्र दे कि मैं अपनी आंखों से इन अंधेरों का अंजाम देखूं और सुबह का सूरज तुलू होते हुए देखूं। एक दफा इनको ये खबर मिली कि बनू हाशिम के एक नौजवान ने नबूवत का दावा किया और वो उसका दीन ऐसे इन इन बातों पे मबनी है। ये खबर सुनते ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम दिया इस्लाम का, आपकी बातों ने उनके दिल पे बड़ा असर किया, फौरन आगे हाथ बढ़ाया, आपके हाथ पे बैत की और जुबान से कलमा अदा किया। उस वक्त इस जमीन पे जितने इंसान बसते हैं उनमें सिर्फ 5 लोग मुसलमान थे, ये छठे नंबर पे थे, इसीलिए इनको सादिसुल इस्लाम भी कहा जाता है, यानी छठा इस्लाम में आने वाला। आज इस दुनिया के अंदर कितने मुसलमान हैं? कोई 2 बिलियन के करीब। और उस वक्त ऐसा वक्त भी था कि कोई भी मुसलमान नहीं था, सिर्फ एक मुट्ठी भर मुसलमान, लेकिन वो तब भी इस्लाम के अहकामात पे चलने में डरते नहीं थे, शर्माते नहीं थे, झिझकते नहीं थे। इनका भी यही हाल था कि जब ये इस्लाम लाए तो इन्होंने अपने इस्लाम को किसी से छुपाया नहीं, हालांकि उस वक्त इस्लाम लाना इतना बड़ा कोई जुर्म था कि जो इस्लाम लेकर आता था उसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाते थे, उसके लिए जमीन तंग हो जाती थी और तरह तरह से उसको अजियतें दी जाती थी। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और बावजूद इसके कि इनका मक्का में कोई कबीला नहीं था, कोई खानदान नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई हिफाजत नहीं थी, तब भी इन्होंने अपने इस्लाम को छुपाया नहीं। अब इनके इस्लाम लाने की यह खबर जो है इनकी मालकन उम्मे अनमार को भी मिल गई, वो तो गुस्से से भड़क उठी। उसने अपने भाई को बुलाया, उसका नाम था सबा बिन अब्दुल उज्जा, और उसको कहा कि बनू खुजा के नौजवानों को साथ ले लो और जाओ खब्बाब के पास और जाके इस खबर की देख के आओ कि ये कितनी ऑथेंटिक है, इसकी तस्दीक करके आओ। इसका भाई हजरत खब्बाब के पास पहुंच गया और साथ अपने कुछ नौजवान भी थे, वो भी भड़के हुए थे इस खबर को सुन के। जब ये वहां गए तो देखा कि वो अपने काम में मसरूफ हैं। उम्मे अनमार का भाई सबा जो था वो आगे बढ़ा, सीन बा अलिफ आइन, और उम्मे अनमार अलिफ नून मीम अलिफ रा, ठीक है, तो आगे बढ़ा, कहने लगा कि हमें कुछ खबर मिली है मगर हमें पता है कि वो खबर सच नहीं हो सकती। पूछते हैं क्या खबर है, उसने कहा खबर मशहूर हुई है कि तुम बेदीन हो गए, और तुमने बनू हाशिम के लड़के की पैरवी शुरू कर दी है। खब्बाब रजी अल्लाह तआला ने बात सुन के बड़े ही नरम लहजे में इरशाद फरमाया, मैं बेदीन तो नहीं हुआ, मैं बस अल्लाह वाहदहू ला शरीक पर ईमान लाया हूं और मैंने तुम्हारे इलाहों का इनकार कर दिया। मैंने वो कह रहा है ना कि तुम बेदीन हो गए हो, ये बेदीन होना नहीं है। तो इकरार किया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया हूं। ये कलिमात उनके मुंह से निकलने की देर थी कि वो सब इन पे टूट पड़े और घूंसों से, जूतों से, और वहां पे तो जाहिर है लोहार की दुकान थी तो लोहे की सलाखें पड़ी हुई थी, हथौड़े पड़े हुए थे, उनसे इतना मारा, इतना मारा कि बेहोश होके गिर पड़े और आपके जिस्म लहूलुहान था, उनके फवारे फूट रहे थे, मगर कोई बचाने वाला नहीं था, कोई आने वाला नहीं था, कोई इनको रोकने वाला नहीं था। अब इसके बाद जब ये बात कंफर्म हो गई कि ये इस्लाम ले आए हैं, तो अब तो इनके ऊपर एक मुसीबतों के पहाड़ टूट कर पड़े, इसलिए कि वो लोग जानते थे कि इनका कोई पूछने वाला नहीं है, ये हमारे न रहमो करम पे हैं। इस वक्त इनकी उम्र कोई बुक्स में लिखा हुआ 16 to 18 ईयर ओल्ड के दरमियान थी, 16 साल के थे या 18 साल, इससे ज्यादा नहीं, यानी बिल्कुल जवान। अब आप एक नौजवान लड़के को देखें, अल्लाह अकबर, के ऐसी जवानी की उम्र है, इसमें बाज दफा इंसान डर भी जाता है, खौफजदा हो जाता है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। हालांकि इनका कोई हामी और मददगार नहीं था। अब इनके ऊपर तरह तरह से उन्होंने मुजालिम करने शुरू किए। जब ये उम्मे अनवार को पता चला तो उसने फिर तरह तरह के तरीके किए कि किस तरह से इनको टॉर्चर किया जाए। एक दफा उसने ऐसा किया कि इनको इतना मारा, इतना मारा, भूखा रखा, और फिर ये रोजाना का मामूल बन गया कि दोपहर के वक्त वो जब गर्मी उरूज पे होती तो चटियल पथरीले मैदान में ले जाया जाता, इनके कपड़े उतार दिए जाते और फिर लोहे की जिरा पहना दी जाती थी, और इनको उस तपती दोपहर के अंदर लिटा दिया जाता, पानी बंद कर दिया जाता, प्यास और तकलीफ से निढाल हो जाते, तो वो पूछते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है, तो फरमाते वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और हमारे पास हिदायत का पैगाम लेकर आए हैं ताकि हमें अंधेरों से नूर में ले आए। ये सुन के वो और बिफर जाते, बेतहाशा पिटाई शुरू कर देते, वो मार मार के थक जाते, थक जाते, और फिर पूछते लात और उज्जा के बारे में तुम क्या कहते हो, वो थक जाते लेकिन ये थकते नहीं थे, कहते वो गूंगे बहरे बुत हैं, किसी को ना नफा दे सकते ना नुकसान। ये सुन के वो आपे से बाहर हो जाते, गरम पत्थर उठा के लाते और आपकी पीठ के साथ लगाते, और इतने वो गर्म होते थे पत्थर के, उनकी गर्मी से, उनके टेम्परेचर से, इनके कंधों से चर्बी और खून बहने लगता था, लेकिन उनको तरस नहीं आता था। हर दिन टॉर्चर, हर दिन टॉर्चर, और ये टॉर्चर कोई रोकने वाला नहीं था, कोई उनको मना करने वाला नहीं था, वो कुछ भी करते, कोई भी वहां पे अदालत नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे। आप आज सोचते हैं ना कि आज अंधेर नगरी है, इससे भी बढ़ के एक जमाना गुजरा है, यहाँ पे कोई बोलने वाला ही नहीं था, और ये कब खत्म होगा, ये कैसे खत्म होगा, देर वॉज नो एंड टू इट। या तो ये मर जाए या फिर ये कुफर बोल दें। वो उन्होंने बोलना नहीं था, तो एक ही चीज है जो उनको निजात देती है और वो मौत है। इनको कोड़े मारे जाते हैं। और आप देखें, ये जो लोहे की जरा मैं आपको बता रही हूं, ऐसे ही है जैसे इस्तरी आप लेके किसी के ऊपर लगाएं इस तरह। क्योंकि वहां पे आज भी आप जाएं, जो वहां की टेम्परेचर्स हैं इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। 2 मिनट आप बाहर खड़े नहीं रह सकते, सिर्फ खड़े नहीं रह सकते। और कहां ये कि लोहे की चादरें वो पहना दी जाए और उनके अंदर बंद कर दिया जाए। और इसके अंदर उम्मे अनमार का भाई जो था वो तो था ही था इस टॉर्चर कर में। इनमें उम्मे अनमार औरत होते हुए भी वो कोई कम नहीं थी। एक दफा कोयलों को दहकाया गया, आप अपना बारबेक्यू का देखें कि वो जो कोयले उसमें रखे होते हैं, इतना दहकाया गया और जमीन पे रख के इनको ऊपर लिटा दिया गया और इनके ऊपर वजनी पत्थर रख दिया गया। ये चीखते थे चीखते थे, लेकिन कोई दादरसी करने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई उनको शोर सुन के भाग के आने वाला नहीं था। ये चीखते रहते, हिल नहीं सकते थे, कोयले इनकी कमर की खाल को पिघला देते थे। और जब कोयले पिघलते थे, खाल पिघलती थी, तो उससे कोयले ठंडे होते थे। उम्मे अनवार ने एक दफा इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करते हुए देख लिया। इतनी वो गुस्से से बिख भर गई, उसने तो अपना ये मामूली बनाया हुआ था ना फिर कि इनको रोजाना टॉर्चर करना है, लेकिन अब उसने टॉर्चर का एक और ही तरीका देख लिया, सोचा एक और तरीका उसने, इंतहा कर दी जो कि हर दूसरे तीसरे दिन लोहे की भट्टी में से गरम सलाख निकालती थी और उसको लेके इनके सर को दागती थी और ये भी होश हो जाते थे। और आपकी जुबान से उम्मे अनमार उसके भाई के लिए बतवा निकलती थी। ये जो कुछ हो रहा था, इस इन वाकयात की खबर मक्का में जंगल की तरह फैल गई थी। और ये लोग चाहते भी ऐसे थे कि लोगों को पता चले, ताकि कल को लोग कोई और खड़ा होके इस्लाम का दावा ना करें, लोग इतना डर जाएं, इतने खौफजदा हो जाएं कि कोई इस तरफ को ना आए। इनको जो सजाएं दी जा रही थी वो छुपके नहीं दी जा रही थी, सबके सामने होती थी। ऐसे सीन्स इंसान देख भी नहीं सकता, पढ़ना भी मुश्किल है, लेकिन उनकी जुर्रत कैसी थी कि सब हैरान होते थे कि ये क्या बात है, कि ये इस दीन से फिर क्यों नहीं जाता। और सबसे पहले चूंकि इनको टॉर्चर किया जाना शुरू हुआ, तो इन्होंने लोगों ने तो इससे पहले किसी से सुना ही नहीं था कि किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा इख्तियार की हो और इतना दलेरी का मुजाहरा किया और इस तरह बरमला अपने इस्लाम का ऐलान किया। कुरैश के बूढ़े भी खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला के इस जुर्रतमंदाना कदम पे हैरान होते थे। वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक लोहार इतना पक्का हो जाएगा अपने दीन पे, कि इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करके भी वो टस से मस नहीं हो रहा। उनको ये भी समझ आ रही थी कि ये अब ये चीजें फैलने वाली हैं आगे। इतनी दलेरी, इतनी शुजात, अब उनको डर तो था ना कि ये अब तो ये आगे ही बढ़ेंगी चीजें, इससे आगे और लोग जुर्रत पाएंगे, इससे आगे और लोगों को बहादुरी का सबक मिलेगा, या तो वो खत्म हो जाते या बिल्कुल कुछ और उनको हो जाता, तो तब भी किसी को शायद सबक मिलता। लेकिन इनकी जुर्रत से तो लोगों के हौसले बढ़ गए, जैसे आज हम फलस्तीनियों की जुर्रत से अपने लिए जुर्रत पाते हैं, जैसे आज हम उनका ईमान देख के हमारे ईमान बढ़ जाते। तो ये उस वक्त जब इन्होंने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया, तो और सहाबा को भी इनकी वजह से दलेरी मिली और यके बाद दीगरे फिर कलमा हक बुलंद होने लगा। लेकिन इनके मसाइल में कोई कमी नहीं आई, इनके टॉर्चर्स में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने इस चीज को जारी रखा 16-17 साल के लड़के पे, और इनका सारा जिस्म तशद्दुद सह सह के दागदार हो गया था, कमर पे भी दाग थे। और अभी आप देखें, इन्होंने कोई पूरे पूरे कुरान नहीं पढ़ लिए थे, कोई डिग्रियां नहीं ले ली थी, सिर्फ इतना पता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, सिर्फ इतना पता था। कोई दर्स नहीं उन्होंने अटेंड किए थे, कोई और उन्होंने कोई सेमिनार नहीं अटेंड किए थे, कोई और ऐसी तालीम नहीं ली थी अभी, तब भी मैं सोचती हूँ ये कैसे लोग थे। कयामत के दिन जब ये खड़े होंगे और हम खड़े होंगे, तो हमारी क्या चीज होगी जो हम अल्लाह ताला के सामने पेश करें। हम एसी में बैठ के या हीटर वाले घरों में बैठ के, आरामदेह बिस्तरों पे बैठ के, खाने से पेट भर के, फिर कहते हैं हाय अमल करना तो बड़ा ही मुश्किल, इस्लाम पे चलना तो बड़ा मुश्किल, और कोई जरा हमें टेढ़ी आंख से देख ले हमारा हाल कैसा हो जाता है। हम परेशान होके कहने लगते हैं हम मुझसे नहीं होता ये, और कोई जरा हमें सिर्फ धमकी दे दे, सिर्फ धमकी कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी, तो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। अभी किसी ने एक्शन नहीं लिया, और फिर भी हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े कहीं मोमिन मुसलमान हैं। हमने खुद तो क्या करना है, हमसे तो ये कहा जाए कि जुल्म के खिलाफ आवाज ही उठा लो, तब भी हम डरते हैं, यहाँ ये मुझसे कोई पूछना हो जाए, मुझ पे कोई आफत ना आ जाए। और इन लोगों को देखें, अल्लाह अकबर। इसके बाद अब बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने उम्मे अनमार को राजी किया कि इनको बेच दें ताकि वो इनको खरीद लें। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का माल तो इसी रास्ते में जाता था ना, तो उन्होंने फिर इनको खरीद लिया और आजाद कर दिया। लेकिन आपको पता है, ये ऐसे लोग थे जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। जब भी मुशरिकीन को कोई जोश आता था, जब भी उनको कोई गुस्सा आता था, तो उनके पास फ्री हैंड था, इनको जो मर्जी पकड़े और कुछ भी कह दे। इसीलिए आप वो वाक्य अगर आपको याद हो जो आयात कुरान पाक में उतरी, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुम बसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू तयकूल रसूलु वल्लदीना आमनू माहु मता नसरुल्लाह। क्या तुमने ये समझ लिया कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तक तो तुम पे वो हालात ही नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पे आए थे। इनके ऊपर बीमारियां, मुसीबतें, क्या क्या परेशानियां आई, और वो यहां तक झंझोड़ दिए गए कि रसूल और उनके साथी ईमान वाले कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। आपको पता है, इसकी तफसीर में मैंने आपको बताया था कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साथ टेक लगाए हुए बैठे थे, तो यही खब्बाब बिन अरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाने लगे या रसूल अल्लाह आप हमारे लिए दुआ नहीं करते, इतने हालात ऐसे हो गए थे ना, कितनी उनकी जिंदगी ऐसी होगी, कोई दिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए आसानी हो, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जो उनके लिए कोई आराम हो, हर तरफ से और हर वक्त उनके तरफ मुखालफत, गालम गलोच, मारपीट, कोई भी मार दे, कुछ कर दे। और सबसे बड़ी बात यह कि जालिम को कोई पकड़ने वाला नहीं था, वो ही जालिम जुल्म करके दंदनाते फिरते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई रोकने वाला नहीं। आप कुछ सोचे ना कि आज कहीं जुल्म हो रहा हो, 10 तरफ से लोग आते हैं जालिम का हाथ पकड़ने के लिए, कुछ कहने के लिए, कहीं से आवाज उठती है, कुछ तो कोई कहता है, कोई सड़क पे किसी को मार रहा हो तो कोई तो आता है पकड़ने के लिए, कोई भी कुछ नहीं कहता था। और उस बंदे को पता होता था कि मैं चीखता भी रहूं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के होश खो देते थे। लेकिन कैसा संगदिल माशरा था कि जहां पे किसी के ऊपर कोई रहम या किसी के अंदर कोई किसी किस्म का किसी के लिए तरस या कोई जज्बा हो, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। अल्लाहु अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, अब आप ये सोचे जरा ये बात कितनी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए बैठे थे, आप आगे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस अभी से घबरा उठे, सुनो तुमसे पहले जो लोग मुआहिद गुजरे हैं उनको तो पकड़ के उनके सरों पर आरे चलाए जाते थे और चीर के उनके सर के दो टुकड़े कर दिए जाते थे, लेकिन वो तौहीद से नहीं हटते थे। लोहे की कंघियों से इनके गोश्त पोश नोच लिए जाते थे, लेकिन वो अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ते थे। कसम अल्लाह की, इस मेरे दीन को तो मेरा रब इस कदर पूरा करेगा कि बिला खौफो खतर सना से हजरे मौत तक सवार तन्हा सफर करने लगेगा और उसे सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा। दिल में ये खौफ होना और बात है कि कहीं मेरी बकरियों पर भेड़िया ना पड़े, बस ये बस थोड़ा बहुत डर होगा कि मेरी बकरियों को कोई भेड़िया ना पकड़ ले, मगर उसके अलावा किसी डाकू किसी चोर किसी लुटेरे का कोई खौफ नहीं होगा। लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लेकिन अफसोस तुम जल्दी करते हो। ये उनको कहा जा रहा है, अफसोस तुम जल्दी करते जो इतनी तकलीफ से आए। हम सिर्फ 2 दिन भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करते, अपने खानदान वालों की बातें हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं जब इनका पढ़ रही थी, मैं बिलीव में मेरे सोच रही थी कि अल्लाह ताला ये कैसे लोग गुजरे, और अपना ईमान और अपनी छोटी छोटी चीजें इतनी हकीर लग रही थी कि ये क्या है, ये जिनको हम कुर्बानी का नाम भी देते वो क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है, ये कुर्बानी कहलाने के लायक भी नहीं है। मैंने क्या कुर्बानी दे दी, हाँ कि मैं हिजाब लेने लगी हूं, ये क्या कुर्बानी है। मैंने क्या कुर्बानी दे दी कि मैं झूठ नहीं बोलती, और मैंने सच बोल दिया तो मेरी नौकरी जो थी वो चली गई, ये मेरी बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। मैंने क्या कुर्बानी दे दी कि किसी ने मुझे ऐसा ऐसा कहा लेकिन फिर भी मैं लोगों के मजलूमों के खिलाफ आवाज मुजलूमों के हक में आवाज उठाने से बाज नहीं आई, ये मेरी कुर्बानी। मेरा फेसबुक अकाउंट बंद हो गया, मेरा ये हो गया, मुझे बिजनेस में लॉस हो गया, लोगों ने मेरी दुकान पे आना छोड़ दिया क्योंकि मैं मुसलमान हूं, तो मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। आप देखिए उनकी तो मालकन जिसके पास उनकी, यानी समझ लें कि एक तरह से उनकी गुलामी की, गुलाम थे वो और वो मालकन थी, तो उनके जो खाना पीना रहना सहना उनका काम कारोबार सब चीज वही कंट्रोल करती थी। अब उसको नाराज करने का मतलब ये था कि जिंदगी अजियत बन जाए, ये जिंदगी को जहन्नुम बना देने वाली थी वो, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की क्योंकि इन्होंने जन्नत के सौदे किए हुए थे ना, उनको कुछ और नजर आता था यहाँ रहते हुए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मदीना की तरफ हिजरत की इजाजत दे दी तो ये भी हिजरत के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक्त तक ये मक्का से जाना नहीं चाहते थे जब तक अल्लाह ताला उम्मे अनमार के खिलाफ की गई बद्दुआ को दिखा ना दे इनको। तो फिर ये हुआ, अल्लाह का इंसाफ बहुत है। हम सोचते ना पता नहीं ऐसे ही अंधेर लगी रही चलती रहनी है, नहीं, जो जालिम है वो डरे, अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज है वाकई। उसके बाद उम्मे अनमार बीमार पड़ गई उसके सर में ऐसा दर्द उठा कि उस जैसा दर्द पहले सुनने में नहीं आया था। वो शिद्दत इस दर्द की वजह से इतना कराहती थी, चीखती थी और ऐसी आवाजें निकालती थी जैसे कोई कुत्ता भौंकता है। उसके बेटे उसको हकीमों के पास लेके गए, हर जगह इसका इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी उसको अफाका नहीं हुआ। हाँ, हकीमों ने एक इलाज तजवीज किया, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, कि इसके सर को लोहे की गर्म सलाख से दागा जाए। इसके सिवा इसका कोई इलाज नहीं। उस तरह इसके लोहे की गर्म सलाख इसी तरह से लाई जाती थी और इसके सर पे लगाई जाती थी। जब सलाख लगती थी तो उसकी तकलीफ जो थी वो समझ ले थोड़ी कुछ देर के लिए भूल जाती थी उसको, क्योंकि ये सलाख लगती थी। अल्लाह ताला ने उसी तरह उसको अंजाम दिखाया। अल्लाह हु अकबर। अल्लाह ताला जालिम को ढील देता है, लेकिन जालिम जो समझता है ना कि पता नहीं मुझे ढील मिली है तो शायद छुट्टी मिल गई, तो वो छुट्टी नहीं होती। अच्छा, इनको तो माली नुकसान भी पहुंचाया गया इस तरह से कि देखिए, ये तो एक गुलाम थे, गुलाम के पास कितनी पूंजी होगी, लेकिन आस बिन वाइल के जिम्मे इनका कर्ज था। आस बिन वाइल बड़ा सरदार था, ये गुलाम थे, तो ये उससे कहते रहते थे कि मुझे मेरा कर्जा वापस दे दो, अदा कर दो, और वो कर सकता था। तो वो जवाब देता था, जब तक तुम मुहम्मद का साथ नहीं छोड़ोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तक नहीं मिल सकता। ये जवाब देते, तू मर के भी जिंदा हो जाए ना तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। वो कहता, अच्छा, मर के जिंदा होऊंगा मैं, तब तो मेरे पास वहां पे भी माल और औलाद काफी होगी जैसे यहाँ पे है, उस वक्त तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। इस पे हंसता था ना, यानी उसने इसको मजाक बनाया इसको। इस पे अल्लाह तआला ने सूरह मरियम की आयात 77 और 79 उतारी, 77 से 79 तक, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपने उस आदमी के हाल पर नजर की है जिसने हमारी आयात से कुफर किया और कहा मुझको माल और औलाद मिलेगी, क्या इसको गैब की खबर हो गई या रहमान से अहद लिया वैसे? हरगिज नहीं। ये जो कुछ कहता है हम इसको लिख लेते हैं और इसके अजाब में ढील देते चले जाएंगे। तो उसने नहीं अदा करके दिया इनका कर्जा, लेकिन फिर इन्होंने हिजरत कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते थे। आपके साथ ही इन्होंने, यानी समझ लें कि उनकी जिंदगी जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गुजरी। मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्राश बिन समा और इनके दरमियान मुआखात करा दी, और फिर ये बदर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे, आपके झंडे तले लड़ाई की, और ओहद में भी शरीक हुए, और मैदाने ओहद में अल्लाह ताला ने इनके सीने को ठंडा कर दिया जब उम्मे अनमार के भाई सबा बिन अब्दुल उज्जा की लाश इन्होंने देखी और उसको जहन्नुम वासिल किया था हजरत हमजा रजीला ताला ने। अल्लाह ताला ने इनको लंबी उम्र दी, यहाँ तक कि इन्होंने खलफाए राशिदीन का दौर भी देखा, और हर दौर में ये एक जलील कदर सहाबी की हैसियत से रहे। एक दफा हजरत उमर के पास तशरीफ लाए और उस वक्त वो अपने मसनद पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने साथ इनको बिठा लिया और फरमाया, अल्लाह अकबर, कि आप और बिलाल इसके हकदार हैं कि इस मसनद पे बिठाया जाए। फिर हजरत उमर ने पूछा कि मुशरिकीन के हाथों आपको क्या अजियतें मिली, तो आप जवाब देने में हिचकचाए। उन्होंने इसरार किया हजरत उमर ने, तो खब्बाब रजी अल्लाह ताला उन्होंने पीठ से चादर उठाई। उमर रजी अल्लाह ताला देख के हैरान रह गए कि पूरी कमर के ऊपर गड़े पड़े हुए थे, निशानात रह गए हुए थे। पूछा, ये गहरे जख्म कैसे आए? फरमाने लगे, मुशरिकीन जो थे लोहे की चादर गरम करते जब वो अंगारा बन जाती तो मेरे कपड़े उतार के मुझे पीठ के बल इस पे घसीटते थे, जिसे मेरे बदन का गोश्त पीठ की हड्डियों से अलग हो जाता। आग को खून और पानी बुझाता जो मेरे बदन से निकलता था। कभी कोयलों को सुर्ख आग की तरह करके फिर मुझे उनके ऊपर लिटाया जाता था। अल्लाह हू अकबर। हजरत खब्बाब अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में बड़े मालदार हो गए थे। इतना सोने चांदी के मालिक बन गए थे जिसका इनको खुद भी वहमो गुमान नहीं था। लेकिन उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करने का ना एक बड़ा ही अनोखा सा तरीका इख्तियार किया जो पहले कभी किसी ने नहीं इख्तियार किया था। क्या करते थे कि घर में एक ऐसी जगह रखी हुई थी जिसका सब मोहताजों को फकीरों को पता था, वहां ले जाके दिरहम और दीनार रख दिया करते थे। और ना वहां पे कोई पहरेदार मुकर्र किया था, ना कोई ताला लगाया हुआ था, कुछ भी नहीं था। जरूरतमंद इनके घर आते, आराम से चुप करके जितनी उनको जरूरत होती वहां से माल उठाते और ले जाते। इसके बावजूद इनको ये डर था कि इस माल के मुतालिक क्यामत के दिन मेरा हिसाब लिया जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मुझे अजाब दिया जाए। अल्लाहु अकबर। 37 हिजरी में कहा जाता है कूफा में ये बीमार पड़ गए। अब कुछ लोग होते ना, उनके पास एक आजमाइश के बाद एक आजमाइश होती, तो इलाज बहुत कराया लेकिन मर्ज बढ़ता गया। मर्ज इतना लंबा हो गया और इतना तकलीफ दे था कि घबरा के कहने लगे, अगर अल्लाह के नबी से ने मौत की दुआ करने से मना ना किया होता तो मैं दुआ कर लेता। और जब हालत ज्यादा नाजुक हो गई और कफन लाया गया तो उसको देखकर आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। फरमाने लगे, हाय हमजा को तो पूरा कफन भी मुयसर ना हुआ और मुसब बिन उमैर एक छोटी सी चादर में कफनाए गए थे। अगर उनके पैर ढांके जाते थे तो सर खुल जाता था, सर ढांका जाता था तो पैर खुल जाते थे। आखिर सर ढांक दिया गया और पैरों पर घास रख दी गई। कुछ लोग इयादत करने को आए और कहा, ए अबू अब्दुल्ला तुम खुश हो जाओ, कल तक तुम अपने साथियों से जा मिलोगे। ये सुन के रिक्कत तारी हो गई। फरमाया, मैं मौत से नहीं घबराता लेकिन तुम लोगों ने ऐसे लोगों को याद दिला दिया, यानी मुझे ऐसे लोगों की याद दिला दी है जो इस दुनिया से अजर लेके चले गए। और मुझे डर है कि कहीं जो दुनिया मुझे मिली है ये ना कह दिया जाए कि यही तुम्हारा बदला था और आखिरत में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। राहो अकबर। मैं उनको क्या डर था कि ये ना हो कि हमें मुझे ये कह दिया जाए कि अब यहां पे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और तुम्हें जो मिलना था वो दुनिया में ही मिल गया। बस सहाबा इनके पास तशरीफ लाए जब ये मरजुल मौत में मुब्तला थे, तो उनको देख के फरमाने लगे, इस घर में मेरे पास 80,000 दिरहम है। खुदा की कसम मैंने कभी इनको नहीं छुपाया, ना कभी किसी साहिल को महरूम वापस लौटाया। ये बात कही और जारो कतार रोने लगे। साथियों ने पूछा, आप क्यों रोते हैं? फरमाया, मैं इसलिए रोता हूं कि मेरे बहुत से साथी इस दुनिया से चले गए, ना उनको दुनिया मिली ना उन्होंने दुनिया से कुछ पाया, मुझे ये माल मिल गया है। मुझे डर है कि ये माल कहीं मेरे आमाल का बदला ना हो और आखिरत में मैं महरूम ना रह जाऊं। अल्लाह हू अकबर। कूफा वाले अमूमन अपने मुर्दों को शहर के अंदर ही दफन करते थे, लेकिन इन्होंने वसीयत कर दी थी कि मुझको शहर के बाहर दफन किया जाए। इस वसीयत के मुताबिक जब इनकी वफात हुई तो अली बिन अबी तालिब, उन्होंने इनका जनाजा पढ़ाया और शहर से बाहर इनको दफन किया गया। अली रजी अल्लाह ताला कब्र के पास खड़े होके फरमाने लगे, अल्लाह खब्बाब पे रहम करे, उसने दिल की रग़बत से इस्लाम कबूल किया, खुश दिली से हिजरत की और मुजाहिद के रूप में जिंदगी बसर की। इनको जब कहा जाता है हजरत अली जंगे सिफीन से वापस आ रहे थे, तब इनकी वफात की इतला उनको मिली थी, तो 37 हिजरी में इनकी वफात हुई। इनका जरिया माश हमेशा यही रहा, तलवारें बनाते थे, वो ही इनका जरिया माश था। इस्लाम का इब्तदाई दौर तो इन्होंने बड़ी बड़ी फकीरी में गुजारा, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने दिल फेर दिया और वफात के बाद तो देखें, अब कहते हैं 80,000 दिरहम है मेरे पास पड़े हुए। इनको आपने इनके बारे में पहले भी सुना हुआ, आपको वाकया याद दिलाऊं कि जब हमने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के इस्लाम लाने की स्टोरी डिस्कस की थी, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था ना कि हजरत उमर अपनी बहन के घर जब तशरीफ लेकर गए थे, तो उनकी बहन और बहनोई को कौन कुरान पढ़ा रहा था? ये वही खब्बाब बिन अरत है जो फिर जाके छुप गए थे और उस वक्त निकले थे जब देखा था कि अली उमर रजी अल्लाह तआला इस्लाम से मुतासिर हो गए और उनकी रगबत हो रही है इस्लाम की तरफ, तब ये निकल के आए थे और इन्होंने फरमाया था कि उमर मुझे लगता है कि तुम्हारे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है वो पूरी हो गई। अब उमर रजी अल्लाह तआला ने पूछा था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या दुआ थी, तो बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि दोनों उम्रों में से, यानी उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हिशाम, इनमें से या अल्लाह जो तुझे प्यारा हो उसके जरिए इस्लाम को कुव्वत दे। तो ये ऐसे प्यारे सहाबी थे, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आके देखते रहते थे कि कैसे इबादत कर रहे हैं, तो वॉच करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता नहीं होता था तो किस तरह इबादत करते हैं, क्या आपका तरीका है, क्योंकि इनको बड़ी ये तलाश होती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे करते हैं ना उस तरह ही मैंने करना, और आपके अकवाल आपके आमाल वो देखते थे। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात नमाज पढ़ी तो पूरी रात देखते रहे, सुबह को पूछा फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, रात को आपने ऐसी नमाज पढ़ी है इससे पहले नहीं कभी पढ़ी। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे 3 चीज़ों की दुआ की इजाज़त दी गई थी, 2 तो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और 1 कबूल नहीं की, वो वाली जो हदीस आती है। तो इनसे तकरीबन मजमूई तादाद जो अहदीस की जो इन्होंने रिवायत की वो 33, और 3 तो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं। अल्लाहु अकबर, ये वो लोग हैं जो हमारे रोल मॉडल और जिनके नक्शे कदम पे हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। हम इनकी तरह और इनके मकामात को तो हरगिज़ नहीं पहुंच सकते, मगर कम से कम इनकी ज़िंदगी से इतना ज़रूर सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में धूप आए या छाँव, हालात अच्छे हों या बुरे, दीन इस्लाम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे सख्ती वो कोई ऐसा ऐसा मुसीबत का कोई वक्त हो या कोई ऐसे तकलीफ का वक्त हो जिसमें इस्लाम को छोड़ने से निजात मिल सकती हो, तब भी दीन इस्लाम को गले से लगाए रखना, ऐसे ही लोगों के लिए आखरत में जन्नत है जो इस दीन के साथ वफादारी निभाते हैं और जो बात बात पे दीन को उतार के फेंक देते जैसे ये कोई चीज ही नहीं, फालतू चीज है, जरा जरा सी बात के ऊपर उनके दिल टूट जाते हैं और वो गम में चले जाते हैं और वो मायूस हो जाते हैं और या वो सोचते हैं कि ये क्या हमने गले में फंदा डाल लिया कि दीन इस्लाम की वजह से हमें ये हो रहा है और हमें एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है और हमारा नाम पूछा जा रहा है और हमसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और अब तो हम इसको छोड़ते हैं, ऐसे लोगों का क्या वफादारी है फिर इस दीन के साथ। इनसे सीखिए कि इस तरह के खौफनाक दिल दहला देने वाले जो हालात हैं वो भी इनको हिला नहीं सके।
اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالی ان صحابہ کرام کو جنت الفردوس کے درجات عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.